Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Bolo bolo, sab log bolo. Sing loudly. Everybody, sing loudly. Ah, very nice.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hey, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Gurudev, Jai Gurudev. Jai Gurudev, Hari Gol, Hari Gol, Hari Gol, Gol, Hari Gol. अनंत पद्मनाभ की, श्री अनंत शयन भगवान की, श्री कारकल धाम की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। तो आज के इस 31 दिसंबर के इस साल के आखिरी दिन में आपका कारकाड़ क्षेत्र में स्वागत है। कारकाड़ा ये उडुपी से पूर्व दिशा में आता है। अब हमने 30-35 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जो भगवान के विग्रह हैं अपने दर्शन किए सब लोग ना, इतने अद्भुत विग्रह हैं भगवान के। जब मैं पहली बार यहाँ पर आया इस मई महीने में तो मानो मैं इनके प्रेम में डूब गया, इतना सुंदर उनका दर्शन है यहाँ पर। और इनकी कहानी छोटी सी है लेकिन उनसे संबंधित जो कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक 12 किलोमीटर के आगे एक नदी है जिसका नाम भी पता नहीं है। उस समय 500 साल पहले और अभी भी यहाँ पर जैन धर्मीय लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। थोड़ा सा आगे जाएंगे 5 किलोमीटर तो आपको जैन महावीर की एक बड़ी मूर्ति मिलेगी जो कम से कम आकाश में 60 फीट लंबी है, एक पत्थर में बनी हुई, उसको गोमटेश्वर कहते हैं। तो वो बहुत फेमस है, यहाँ पर भी है और मैंगलोर में जाएंगे तो वहाँ पर भी एक गोमटेश्वर है धर्मस्थल में। तो उस समय महावीर के जो अनुयायी हैं जैन पंथीय, उनके कुछ साधु लोग जो हैं वो नदी में स्नान करने गए। तो नदी में स्नान करने गए, नदी के तल में उनको ये मूर्ति नज़र आई। और अब देखेंगे ये जो पत्थर से बना हुआ मंदिर है, ये इस तरह का मंदिर जैन लोगों के इसमें होता है। तो उन्होंने अपनी ये जगह बना के रखी थी, लेकिन जब मंदिर में इतनी भव्य, इतनी बड़ी और इतनी दीर्घ काया की मूर्ति प्राप्त हुई
तो उन्होंने निर्णय लिया कि इसको यहीं पर स्थापन किया जाए और इस तरह से ये मूर्ति यहाँ पर स्थापन की गई है। इतनी छोटी कहानी है इसकी। चार भुजाएं हैं, आपने देखे होगी ना, एक भुजा से वो अपने सर को सिरहाने रखे हुए हैं, दूसरी भुजा में कमल है राइट साइड में, तीसरी भुजा लेफ्ट साइड में जो है उसमें चक्र है, और चौथी भुजा जो है अपने पैर की ओर ऐसे रखी हुई है। ये शयन की भावना में है, यानी कि विश्राम कर रहे हैं, और उनके चरणों में दो देवियां बैठी हुई हैं, एक है श्री देवी और एक है भू देवी, देखा ना आपने ठीक से, और उनके नाभि से भगवान ब्रह्म जो हैं उनका जन्म हुआ है। ऐसा बहुत सुंदर यहाँ पर दर्शन है। और ये जो अनंत पद्मनाभ भगवान हैं, इनके मूल विग्रह जो है वो साउथ इंडिया में है, त्रिवेंद्रम में। आप में से कितने लोग गए हैं अनंत पद्मनाभ? हाँ, बहुत कम लोग गए हैं इसमें से, मतलब बहुत लोगों को भी जाना बाकी है, अभी लेके जाएंगे आपको। हाँ, अनंत पद्मनाभ, जनार्दन स्वामी और आदि केशव भगवान, सब भगवान निद्रा में हैं, केवल जनार्दन स्वामी खड़े हैं, बाकी जहाँ भी जाएंगे साउथ इंडिया में सब भगवान विश्राम कर रहे हैं, एकदम गहरी नींद में हैं। इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं कि एक एक हाथ जो है ना वो इतना इतना बड़ा है, मतलब ये पंजा जो है ना इतना बड़ा है, इतना इतनी इतनी बड़ी उंगलियाँ हैं उनकी, और उंगलियों में बड़े बड़े अंगूठियाँ और जेवर पहने हुए हैं कलाई में। हाँ, हम लोग गए थे ना अप्रैल महीने में, गए थे ना मार्च महीने में गए थे, अप्रैल। तो बहुत सुंदर विग्रह हैं, और इतने बड़े बड़े विग्रह जो है वो बड़ा इतना मंदिर होता है कि बीच के दरवाजे से उनका केवल वक्षस्थल दिखाई पड़ता है, आगे जाएंगे सेकेंड दरवाजे में तो उनका सर दिखाई पड़ेगा, शीश, और थोड़ा आगे जाएंगे तो लास्ट दरवाजे से उनके पैर दिखाई पड़ेंगे। ऐसे बहुत भव्य मंदिर है उनके। तो जो अनंत पद्मनाभ है उनकी मैं कहानी आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये भी अनंत पद्मनाभ ही हैं, तो आपको त्रिवेंद्रम के अनंत पद्मनाभ की कहानी बताना चाहूँगा। एक बहुत ही श्रेष्ठ वैष्णव भक्त थे, उनका नाम था दिवाकर, और दिवाकर भगवान के बड़े शुद्ध भक्त थे, और दिवाकर जी इतनी करुणा से, भजन से, भावना से भगवान को पुकारते थे, तो भगवान को विचार आया कि इनको दर्शन दिया जाए, तो भगवान ने एक छोटे से बालक का रूप धारण किया, बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक, बहुत नटखट, और वो इनके पास में आए और इनसे वार्तालाप करने लगे। इस बालक को देखते ही दिवाकर के मन में इतना प्रेम उत्पन्न हुआ, इतना आकर्षण, इतना प्रेम, इतना वात्सल्य निर्माण हुआ कि दिवाकर ने कहा कि हमारे पास ही रहो। तो बालक कहते हैं कि मुझे माता पिता नहीं है, भाई बहन नहीं, मैं अकेला हूँ, जंगल में घूमते रहता हूँ। दिवाकर जी कहते कोई बात नहीं, हमारे पास रहो। तो दिवाकर को ब्राह्मण बालक कहते हैं कि हमारी एक शर्त है, हम एक शर्त पे आपके साथ रह सकते हैं कि कभी भी आप हमको डांटेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए, हम कुछ भी करेंगे तो आप हमें डांटेंगे नहीं। तो ये दिवाकर जी उनको बालक को देखकर इतने प्रेम में मग्न हो गए थे कि वो कुछ भी करने को तैयार थे, बोले एनीथिंग फाइन, हम कभी भी आपको डांटेंगे नहीं। तो रुकने लगे उनके पास, फिर रहने लगे इस शर्त पर। और उसके बाद में दिवाकर के ध्यान में आया कि ये बालक इतना नटखट है, इतना नटखट है, इतना नटखट है, इतनी शरारतें करते थे बालक, लेकिन दिवाकर कुछ बोल नहीं पाते थे उसको, क्योंकि वादा किया ना, क्योंकि अगर कुछ बोलेंगे तो चले जाएंगे, फिर वो विरह में आएंगे, फिर दुख होगा, इसलिए वो बहुत सहन करते थे। यही तपस्या थी उनकी, बालक की जो नटखटपन है उसको सहन करना, शांति से बैठना बस। लेकिन साथ साथ में बालक का नटखटपन जो था ये देखकर दिवाकर जी को बड़ा आनंद भी होता था, जैसे हमारे घर में बालक बहुत शरारत करते हैं तो उनको रोकते हैं, टोकते हैं, डांटते भी हैं, लेकिन उनको देख के हमको मज़ा आता है बहुत, है ना। हम भी कथा में बोलते रहते हैं बालकों को बंद करो बंद करो, लेकिन बालकों को खेलते हुए देखकर हमको भी बहुत मज़ा आता है। सबको, जो भी काला कलूटा बालक भी होगा ना, फिर भी वो बालक जब होता है और जब वो शरारत करता है तो देखने वाले को बहुत आनंद आता है। ये बाल्यपन की जो है खूबी है, बाल्यपन किसी का भी हो, कुत्ते का पिल्ला भी होगा, बिल्ली का पिल्ला भी होगा, जब बालपन में होता है उसको देख के सबको आनंद आता है, बाल्यपन का एक ऐसा आकर्षक गुण है। तो इनकी शरारत देख के भी उनको डांटने का मन हुआ करता था, लेकिन वो डांटते नहीं थे उनको। तो कई महीने बीत गए, बालक ने उनका संग दिया उनको, मतलब भगवान ने स्वयं अपने बालक रूप में उनको प्रेम दिया, संग दिया, उनके वात्सल्य का अनुभव किया। एक दिन उन्होंने ऐसी शरारत की कि पूजा में बैठे थे दिवाकर जी, भगवान को बड़े तुलसी से चंदन से सेवा करते थे उनके, और उनके पास एक शालिग्राम की शिला थी, उनकी भी वो पूजा करते थे, चंदन तुलसी गंगा जल नदी के जल से पूजा करते थे, वहाँ पर तो कावेरी का जल है वहाँ पर पूजा करते थे। तो पूजा करते करते अचानक ये बालक आया, उसने शालिग्राम को उठाया और अपने मुँह में डाल दिया, मुँह में डालकर उसको चूसना आरम्भ किया। तो ये देखकर एकदम अचानक विचार करने के पहले ही उन्हें बोला, क्यों गया तुमने ऐसे, और डांटना आरंभ किया। तो बालक ने शालिग्राम मुँह से निकाला और दे दिया, बोला मैं जा रहा हूँ। अरे तुम क्यों जा रहे हो? मैंने कहा था आपको डांटना नहीं है मुझे, कुछ भी करने के बाद भी आपने डांट दिया मुझे, मैं जाऊँगा। और ऐसे करके करके वो जाने लगे, तो ये पूजा वूजा छोड़ के बालक के पीछे भागने लगे, क्योंकि उनको पता चला कि हमने गलती कर दिया, अभी बालक चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूँगा, इतना आसक्त हो गया हूँ, बालक से इतना प्रेम हो गया है, कैसे मैं रहूँगा उसके बिना। तो ऐसे भावना से वो भागने लगे भागने लगे, बालक आगे भागने लगे भागने लगे, और ये बालक आगे भाग रहे जोर से और ये दिवाकर जी पीछे भाग रहे हैं, ऐसे करके करके कहाँ कहाँ लेके जाते हैं और जंगल में चले जाते हैं। और जंगल में जाने के बाद में बालक के जो, खास करके जंगल जाने के बाद में उनके पैरों के घुंघरू और कमर पट्टा जो है, कमर कांचनी बोलते हैं उसको, उसकी झुनझुन झुनझुन आवाज़ बहुत सुंदर झनकार जो है दिवाकर के कान में पड़ती है। उसको देख के ये अति आनंद में आते हैं, अति आनंद विभोर हो जाते हैं और भागते हैं उनके पीछे। हाँ, एक एक भगवान के जो अंग होते हैं ना, हर एक अंग आकर्षक है और हर एक अंग भगवान का जो है हर एक इंद्रियों को सुख देता है। दर्शन जो है नेत्र को सुख देते हैं, हाँ उनका नाम कान को सुख देता है, उनके अभी यहाँ पर वो कैसे सुख दे रहे हैं, अपने शरीर में जो अलंकार है उनके झनकार से दिवाकर के कानों को भी आनंद दे रहे हैं। हाँ, जब भगवान के फूल अर्पण किए उनके शरीर पर, उनके खुशबू से नाकों को खुशबू मिलती है, हाँ आनंद मिलता है। इस तरह से हर एक इंद्रिय को भगवान संतुष्ट करते हैं अपने भक्त के लिए, और अपने इंद्रियों को भगवान के विषय में ही संतुष्टि देना, ये जीवन की परिपूर्णता है। और किसी वस्तु में इस दुनिया से भगवान के अलावा जो वस्तुएं हैं उनके द्वारा इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप भगवान को छोड़कर किन्हीं अन्य वस्तुओं से अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहेंगे तो आपके झोली में दुख ही दुख आएगा, कभी भी आपको समाधान प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि भगवान को अलग छोड़कर जिन वस्तुओं से हम अपने इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं वो सारी वस्तुएं नश्वर है, और नश्वर होने की वजह से केवल कुछ समय के लिए अपने इंद्रियों को खुशी मिलती है और बहुत लंबे समय तक हम तड़पते रहते हैं, थोड़ी देर खुशी और बहुत लंबे समय तक तड़प, लिटिल हैप्पीनेस एंड लॉन्ग टाइम हैंकरिंग एंड क्राइंग एंड लेमेंटिंग। लेकिन यहाँ पर भगवान अपने सुंदर घुंघरू से और कमर काचनी से झनकार से अपने भक्त को लुभा रहे हैं, तो और तेजी से भागते हैं। लेकिन अचानक भागते भागते बालक जो है वो गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, और क्या आवाज़ आती है कि अभी मैं आपको अनंत वन में मिलूँगा, मतलब अनंत नाम के जंगल में मेरा दर्शन आपको होगा, वहाँ पर जाके मुझे ढूंढ लेना। और सोच सकते हैं आप, इतने देर से भाग भाग के प्रेम से आसक्त होकर मोहित होकर वात्सल्य से भरकर भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, भावना से विभोर होकर, और अचानक भागने के लिए इसके लिए पीछे भाग रहे हैं, वो बालक जो है गायब हो जाता है और कहता है कि अनंत जंगल में, अनंत नाम के जंगल में मुझे खोज लेना। बड़ी दुखी हो जाती है, अपना जहाँ पर पूजा पाठ था सब छोड़ देते हैं और सीधे अनंत नाम के जंगल के खोज में निकल जाते। कई महीने चलते हैं वो पूछते पूछते कहाँ पर अनंत नाम का जंगल है, सब लोगों को पूछते हैं, हर गांव में जाते हैं, गांव गांव में जाते हैं, सब जगह तलाश करते हैं अनंत नाम का जंगल कहाँ है, कहीं भी नहीं मिलता है। मैं सुना ही नहीं है जंगल ऐसा नाम का, आप क्या बोल रहे हो, एक जंगल कहाँ पर है अनंत नाम का। ऐसे करते 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 साउथ इंडिया में वो त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम वहाँ जाके पहुँच जाते हैं, और बड़े उदास बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं अभी कहाँ से खोजें और कहाँ जाएं आगे। तो देखते हैं कि घर में एक बालक आता है बाहर, उसके पीछे जो दादी आती है, दादी ने बालक का हाथ पकड़ा हुआ है और दादी बालक को डांट रही है कि तुम बहुत शरारती हो, बहुत मस्ती करते हो, अब अगली बार ऐसे करोगे तो तुमको मैं अनंत जंगल में जाके फेंक के आऊँगी, आई विल थ्रो यू इन अनंत जंगल। तो तुरंत इसके कान खड़े जाते, अरे अनंत जंगल का पहली बार नाम सुने पड़ा। तो दादी के पास पहुंचते हैं, पूछते हैं ये जंगल कहाँ है, तो फिर वो दादी उसको उस जंगल का पता बताती, उस समय तक शाम हो जाती है, लेकिन इनको सुबह तक रुकने का जो है ना पेशेंस नहीं है, इतने दिन से व्याकुल है भगवान को। अब आखिरी में पता चला है तो दिन रात भूख प्यास तो क्या उनके लिए कुछ बंधन नहीं उसका। तुरंत जो है उससे एक बाती लेते हैं, एक बाती घी की, घी में डुबाई हुई एक बाती हाथ में पकड़ते हैं और वो दीपक लेकर उसको जिस दिशा में उनको बताया है जाना है उस दिशा में उस दीपक के प्रकाश में आगे चलने लगते हैं और पुकार रहे हैं, हे गोविंद, हे गोपाल, हे अनंत, हे पद्मनाभ, कहाँ पर हो, दर्शन दो, दर्शन दो, पुकार रहे हैं। हाँ, हम आपको कथा में बोलते हैं ना, पुकारो पुकारो। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं, उधर देखते हैं, थोड़ा सा होंठ हिलाते हैं, थोड़ा सा आवाज़ निकलता है। ऐसे पुकारने से वो मिलते नहीं कभी। जब हृदय से पुकारते ना, तड़प से पुकारते, व्याकुल होकर पुकारते ना, तब जाकर उनका दर्शन होता है, तब उनकी प्राप्ति होती है। जब तक हमारे जीवन में हम उनको ऐसे तड़प तड़प कर पुकारने को नहीं सीखते हैं, तब तक हमें वो प्राप्त नहीं होंगे। चाहे कितनी उड़पी यात्रा करो, साउथ इंडिया करो, नॉर्थ इंडिया करो, हिमालय जाओ, कहीं पे जाओ, जब तक हृदय से वो पुकार नहीं आती है तब तक उनका दर्शन नहीं होता है। इसलिए रोज घर में अभ्यास करना चाहिए। हाँ, 31st है आज, सब लोगों को कुछ निश्चय करना चाहिए आने वाले साल के लिए। पिछले साल में क्या गलती किया वो सोचकर अगले वाले साल में क्या प्राप्त करना है, इसके लिए निश्चय करना है। तो निश्चय करना है कि रोज भगवान का नाम लेंगे हम। हाँ, केवल घूमने को नहीं आएंगे, हाथ में माला लेकर आएंगे, उनको पुकारते पुकारते उनको ढूंढते ढूंढते आएंगे, अलग अलग रूप का दर्शन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमें आपका कृपा चाहिए, हमें आपकी सेवा चाहिए। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं पुकारो पुकारो। बोलना और पुकारना में अंतर है। हाँ, अगर हमारे डॉक्टर साहब वहाँ बैठे हैं तो बोले डॉक्टर रंगनेकर, डॉक्टर रंगनेकर, तो सुनाई पड़ेगा क्या? डॉक्टर रंगनेकर जल्दी आओ, तुरंत भाग के आएंगे, कुछ गड़बड़ है, कुछ इमरजेंसी है। हाँ, जैसा पुकारेंगे ना, वो पुकारने की आवाज़ सुनकर वैसे भाग के आएंगे। वो गीत गाएंगे डॉक्टर रंगनेकर, तो वो भी वहाँ पर नाचने लगेंगे, लेकिन आएंगे नहीं, वहीं नाचेंगे। लेकिन जब हम तड़प कर पुकारेंगे ना, तब वो पुकार की तड़प और कशिश सुनकर सुनने वाला भाग के आएगा। हम सब लोग जीवन में सारा अनुभव करते हैं ना, जिसको पुकारना है, जिसको हमारे पास लाना है, उसको पुकार ऐसी पुकारना चाहिए, तभी हम भाग के आएंगे। जब गार्डन में बालक खेल रहा है, देखो अभी बालक भोपर यहाँ पर खेल रहे हैं, एक समझो खेलते खेलते यहाँ से बालक खेलने गया, वहाँ से जोर से चिल्लाया, तो कैसे माँ भागेगी? बीमार होगी या मोटे शरीर की होगी या कैसे भी बैठी होगी, खाना खाती होगी, तुरंत छोड़ के भागेगी, क्योंकि बालक ने चीख कर पुकारा है, तो बैठ नहीं सकती माता वहाँ पर। तो हमको भगवान को ऐसे पुकारना चाहिए, चाहे भगवान शयन कर रहे हों, भोजन कर रहे हों गोलोक वृंदावन में, हाँ रुक्मिणी उनको खिला रही हो, ऐसे पुकारना चाहिए कि तुरंत भाग के आने चाहिए वो। अरे द्रौपदी ने ऐसे ही पुकारा था उनको। द्रौपदी ने जब भी वो दुर्वासा मुनि आए, तभी उनका सबका भोजन हो चुका था। भोजन करने के बाद अक्षय पात्र में से धान्य निकालने के पश्चात, उसके बाद अभी रखने वाली थी तो 60,000 शिष्यों को लेकर आ गए दुर्वासा मुनि, और सब लोग भोजन की अपेक्षा कर रहे थे। द्रौपदी को परेशानी, अभी क्या करूँ मैं, अभी दुर्वासा मुनि क्रोध करेंगे, शाप देंगे, सर्वनाश कर देंगे हमारा। तो जहाँ पर जंगल में बैठी है वनवास में, वहाँ से पुकारती है, हे केशव, हे गोविंद, हे करुणा निधान, हे दयानिधि, रक्षा करो हमारी। तब द्वारका में थे वो, कितना दूर है द्वारका पता है? वहाँ पर रुक्मिणी के हाथ से 56 भोग भोजन कर रहे हो। कोई साधारण व्यक्ति भोजन नहीं कर रहे, कोई भाड़े का किराए का रसोई नहीं बना रहे उनके लिए, स्वयं भाग्य लक्ष्मी भगवान की पटरानी अपने हाथ से भगवान के लिए परोस रही है। अपने हाथ से बनाया हुआ, प्रेम से बनाया हुआ खाना, एक हाथ में पंखा, एक हाथ में प्रेम से उनको क्या चाहिए वो क्या नहीं देख रही है। और जैसे ही द्रौपदी पुकारती है जंगल में, तुरंत जो है उठते चले जाते हैं, और रुक्मिणी को लगता है अरे क्या हुआ, कुछ भोजन में गड़बड़ हो गई, कुछ ज़्यादा तीखा मीठा कुछ गड़बड़ हो गया, मसाला ठीक नहीं गिरा, या हमारे सेवा में कुछ दोष हुआ, हमने कुछ गलती कर दिया, क्या क्रोध हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिना बताए, ये बताने के लिए समय नहीं उनको कि मैं जा रहा हूँ, द्रौपदी पुकार रही है मुझे, मेरी भक्त व्याकुल होकर संकट में है, मेरी भक्त जो है, इतना समय नहीं है उनके पास, उतना तुरंत उठ के भाग गए वो। और तत्क्षण प्रकट हो गए द्रौपदी, रुक्मिणी विचार करती रही क्या हुआ होगा, कि हमारे स्वामी नाराज हो गए और पहुंच गए तत्काल वहां पर। ऐसे एक अनुभव नहीं है, अनंत अनुभव है। गजेंद्र जो थे वो नदी में विहार कर रहे थे सरोवर के अंदर त्रिकुट पर्वत के पास अपने रानियों के साथ में। मगरमच्छ उनके पैर को पकड़ लेता है, युद्ध होता है 1000 साल तक, और 1000 साल के पश्चात गजेंद्र को पता चलता है कि अभी मैं मगरमच्छ के मुंह से नहीं बचूंगा, मेरी निश्चित मृत्यु होगी, सारा मेरा बल क्षीण हो चुका है और मैं मरने वाला हूँ। गजेंद्र मतलब कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बहुत भयंकर शक्तिशाली राजा था वो, हाथी था। लेकिन जब असहाय हो गया तो असहाय होकर जब पुकारा, हे गोविंद हे गोपाल मेरी रक्षा करो, तब भगवान वैकुंठ में थे। और कहते हैं कि अब जो खरबो मील लंबा है यहाँ से वैकुंठ, कितना मील लंबा है उसका हम गिनती नहीं कर सकते। लेकिन भगवान ने गरुड़ को बिठाकर, गरुड़ के ऊपर बैठकर वो वहाँ चल पड़े वहाँ से, और इतने जोर से गरुड़ को भगा रहे थे गरुड़ वहाँ रास्ते में बेहोश हो गया। तो भगवान ने गरुड़ पर बैठने के बजाय गरुड़ को बेहोश अवस्था में अपने कंधे पे लिया और खुद उड़कर भगवान वहाँ पर पहुँचे। डेस्परेट है वो, आई कांट वेट, गरुड़ जी आप पानी पियो, थोड़ा शरबत पियो, हाँ सॉल्ट वाला और नमक वाला, हाँ क्या कहते हैं उसको, पुनर्जल पियो, अपने आप को होश मिलाओ, जब बीपी ठीक हो जाएगा तब निकलेंगे। नो टाइम, मालिक बोलेगा कि मैं मालिक हूँ, मैं कैसे चलाऊँगा कैसे आपको, कुछ नहीं, जब इमरजेंसी होती है सब रूल फेल हो जाते हैं। नॉर्मल रूम कैसा होता है, मालिक को नौकर उठा के चलता है, हाँ जो वाहक होता है ना, कोई वाहन होता है, जैसे गणेश जी के चूहा है और कार्तिकेय के मोर है, वैसे भगवान के गरुड़ हैं। नॉर्मल कंडीशन में गरुड़ जी लेकर चलेंगे भगवान को, इमरजेंसी में क्या हो रहा है, गरुड़ को लेकर भगवान चल रहे हैं, क्योंकि कोई पुकार रहा है। कारण क्या है इसका, कॉमन कारण क्या है, कोई तड़प तड़प के भगवान को पुकार रहा है सहायता के लिए। भगवान स्वस्थ नहीं बैठ सकते उस समय, तत्क्षण पहुंच गए, कुछ ही क्षणों में, ऐसा बताया कुछ क्षणों में, बीच में वो बेहोश हो गए और उनको उठाकर कुछ क्षणों में वहां पहुंच गए, और झट से उन्होंने मरने वाले थे वो, उनको मगरमच्छ के मुंह से बाहर निकाल दिया और मगरमच्छ को उसी के साथ साथ चक्र से काट दिया, और तुरंत गजेंद्र का उद्धार हो गया और वो गंधर्व का रूप धारण किया, क्योंकि पहले गंधर्व थे, उनको शाप मिला था। कहने का तात्पर्य क्या है, पुकारना चाहिए, पुकारने को नहीं सीखेंगे तो जीवन हमारा व्यर्थ है। अगर सहायता के लिए भगवान को पुकारने की नम्रता तीव्रता और चीख हमारे में नहीं है तो यहीं रहो, बार बार आते रहो, जन्म मृत्यु का चक्र काटते रहो, यहाँ का आनंद लेते रहो और बार बार तड़पते रहो, यही उसका सॉल्यूशन है। नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे बट टू चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर दिवाकर जी पुकार रहे हैं, आप पुकारिए, हे गोविंदा, असहाय होकर पुकारिए, हे गोविंदा, हे गोपाल, रक्षा करो, दया करो, हे करुणानिधान। तो इस तरह से पुकारते हुए जा रहे हैं। हाँ अभी हम लोग आराम से इडली वड़ा खा के बैठे हुए प्रेम से यहाँ पर, हाँ वो बेचारे भूखे प्यासे दौड़ रहे हैं, कितने दिन से भाग रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, व्याकुल है, अब मिल चुके हैं, पता चल रहा है उनका, तो पुकार रहे हैं जंगल में रात के समय पे। एक दीपक घी का हाथ में उनके, वो बुझ रहा है उसके हवा से, और अचानक उनको वही घुंघरू और कमर काचने का आवाज़ सुनाई पड़ता है जो उन्होंने बहुत दिन पहले जब वो लुप्त हो गए थे उस समय सुना था। जब भगवान के संबंधित कुछ ध्वनि हम सुनते हैं तो वो परमानेंट होता है, उसको हम भूलते नहीं हैं, क्योंकि दिव्य शाश्वत ध्वनि है वो, उसके हृदय में उसके आत्मा में उस आवाज़ जो थी ऐसी बसी हुई थी कि जैसे अभी बज रही हूँ। तो वही आवाज़ कमर काचने की और घुंघरू की दोबारा बजने लगती है, वही आवाज़ जो बालक भाग रहा था तो उसके कमर में जो अलंकार था, जो उसके पैरों में अलंकार था, उसका कैसे आवाज़ आ रहा था, वैसे दोबारा आवाज़ आने लगा, मानो वैसे बालक ही उनके आगे भाग रहा हो, लेकिन बालक नहीं है वहाँ पर, केवल आवाज़ आ रही है। अचानक बहुत भयंकर आवाज़ आता है, जैसे कोई वज्राघात हो गया, वो बहुत भयंकर आवाज़ आता है, तो एकदम वो आश्चर्य हो जाते एकदम। और एक वहाँ पर बड़ा पेड़ होता है, वो गिर जाता है, बहुत भयंकर प्रकाश उत्पन्न होता है बिजली चमकने की तरह, और उस पेड़ गिरने के पश्चात वहाँ पर 18 किलोमीटर लंबे अनंत पद्मनाभ जी प्रकट हो जाते हैं। बोलो अनंत पद्मनाभ भगवान की। जंगल के अंदर रात में अपने ही दिव्य प्रकाश से सुशोभित भगवान पेड़ के गिरने के पश्चात वहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं। कितने 18 किलोमीटर लंबे, उनका जो शीश था वो एक गांव में था, उनका पेट जो था वो जंगल में था और उनके पैर दूसरे गांव में थे। हाँ, उस समय में भी उनको ये प्रश्न नहीं हुआ, अभी क्या करूँ क्या करूँ। पहला प्रश्न भगवान के भक्त के मन में क्या आता है, क्या सेवा करूँ, हाउ आई विल सर्व। द फर्स्ट क्वेश्चन इन अ जेन्युइन डिवोटीज माइंड इज ऑलवेज वन, हाउ कैन आई सर्व यू माई लॉर्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो तुरंत भगवान का दर्शन होते ही पहले उसके मन में विचार आया, सेवा कैसे करूं उनकी मैं भी। तो समय कच्चे कच्चे आम पेड़ पे लगे हुए थे और नारियल तो थे ही साउथ इंडिया में, तो कच्चा आम निकाल के काटते हैं और नारियल निकालते हैं, उसका पानी निकालते हैं और पेड़ के ही पत्ते निकाल कर उसका प्लेट बनाते हैं और तुरंत भगवान को बड़े प्रेम से आंखों में आंसू लेकर भोग लगा देते हैं। और फिर उनके हाथ में एक डंडी भी होती है जिसको लेकर जंगल में जाते हैं, तो भगवान को कहते हैं कि भगवान आप इतने बड़े लंबे शरीर के हैं, आपका श्रृंगार करना होगा तो मुझे गांव गांव में जाना पड़ेगा। हाँ, अगर शीश में कुछ अलंकार पहनाना पड़ेगा तो उस गांव में जाना पड़ेगा, पैरों में घुंघरू पहनाना पड़ेगा तो इस गांव में आना पड़ेगा, तो आप कृपा करके थोड़ा छोटे हो जाइए ताकि मैं आपकी बढ़िया से सेवा कर सकता हूँ। तो भगवान ने अपने रूप को कम कर दिया और जितना डंडा दिवाकर के हाथ में था उसके 3 गुना साइज़ के बढ़ गए वो, बन गए वो। वो कहते हैं वो 18 फीट बन गए। तो 18 फीट की अनंत पद्मनाभ की जो मूर्ति है वो उधर त्रिवनंतपुरम में है, त्रिवेंद्रम में, बहुत सुंदर मूर्ति है। तो इस तरह से हमारे महाराज जी बताते हैं कि दिवाकर ने भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत लंबे समय तक मेहनत किया, तपस्या किया, कोई सुख समृद्धि लेकर नहीं चले थे वो। हाँ, अच्छा बाढ़ बिस्तरा, नौकर चाकर, खाने पीने के सामान, हाँ पत्नी साथ में सेवा करते हुए, ऐसा कुछ नहीं था उनके पास, उनके पास कुछ साधन नहीं था। बहुत कष्ट उठाए उन्हें भगवान को। देखिए महाराज जी कहते हैं कि जब बड़े कष्ट से हमें कोई वस्तु प्राप्त होती है और जब वो दिव्य वस्तु प्राप्त होने के बाद जो आनंद मिलता है उस आनंद के सामने हम सारा कष्ट भूल जाते हैं और केवल वो आनंद को याद रखते हैं। तो जैसे हम अभी यात्रा में आ रहे हैं, कुछ बहुत हमको शायद असुविधा होती होगी। हाँ, कल हम 4 जगह गए ना, यहाँ चढ़े, ऊपर चढ़े, नीचे उतरे, इधर गए उधर गए, कितना आनंद आया। तो आप लोग क्या याद करोगे, 4 कुंड में पहुंचकर जो आनंद मिला वो याद करोगे कि पहुंचने में कितना कष्ट हुआ उसको याद करेंगे? नहीं याद करेंगे। आपको उस कष्ट को याद करके भी खुशी होगी, अरे कितना हम लोग चढ़े, कितना थक गए थे, ऊपर गए धूप में इधर उधर, लेकिन आनंद आएगा आपको उसको सोच के। इसलिए तपस्या करना जो है वो बहुत आवश्यक है और अच्छा भी होता है, लेकिन तपस्या केवल भगवान के लिए करनी चाहिए। तपस्या की व्याख्या क्या है? तपस्या की व्याख्या है जो स्वेच्छा से भगवान के लिए हम कुछ असुविधा स्वीकार करते हैं तो उसको तपस्या कहते हैं। तो अगर हम अपने लिए कुछ करेंगे भगवान को छोड़कर तो वो तपस्या नहीं है, वो केवल कर्मों का फल है, बैड कर्मा। इसलिए यात्रा में जो भी कुछ असुविधा होती है, देखो हम लोग यहाँ से बस से आए आधा पौना घंटा 1 घंटा बैठकर, लेकिन अनंत शयना को देखकर इतना आनंद आया, लगता है वहाँ से उनके सामने से हिले ही नहीं, इतना सुंदर दर्शन है, किस तरह से आराम से विश्राम कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं सबके ऊपर। तो इस तरह से ये अनंत पद्मनाभ जी की कहानी जो है यहाँ समाप्त हो गई। आप सबको हम बधाई देते हैं कि हम लोग इस मंदिर में आए, अभी तुरंत हम लोग इस मंदिर से निकल के अगले मंदिर जाएंगे मारूर, मारूर में नरसिंह भगवान का मंदिर है। बोलो से अनंत पद्मनाभ भगवान की। सब लोग यहाँ पर अनंत पद्मनाभ जी को प्रार्थना करेंगे कि हमें वो आपकी प्राप्ति करने के लिए जो भी कष्ट लेने की प्रवृत्ति है, तपस्या करने की प्रवृत्ति है, वो दे दीजिए। और कोई भी हमें कष्ट नहीं होना चाहिए, भले कष्ट होगा तो भी हृदय में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। शरीर से कष्ट करेंगे, मन से करेंगे, लेकिन आपके लिए हम कुछ भी करने को तैयार होंगे, ऐसी भावना हमको दीजिए। और साथ साथ जिस भावना से दिवाकर ने आपको पुकारा था, थोड़ी सी भावना वो हमको भी दीजिए ताकि हम भी आपको पुकार सकते हैं और हमारी पुकार सुन के आप भी आने का सोच सकते हैं। द्रौपदी ने पुकारा था, गजेंद्र ने पुकारा था, जैसे उन्होंने पुकारा वैसे पुकारना हमको भी सिखाइए। हाँ, जब कथा में हमको विनती की जाती है कि पुकारो पुकारो, तो हम पुकारें, ऐसी प्रार्थना करना भगवान से। भरोसे अनंत शयन भगवान की जय। धन्यवाद।